लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, कोविड 19 का मुकाबला करने में सारी दुनिया के सामने असाधारण चुनौती है, लेकिन फिर भी अनेक देशों में नफरत और कुछ खास समूहों पर दोषारोपण या कलंकित करने के मामले भी सामने आए हैं, जो बेहद चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल के समय में विदेशियों के प्रति डर और नापसंदगी, नस्लवाद और असहिष्णुता जैसी समस्याओं के उभार पर गहरी चिंता जताते हुए असरदार कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने पिछले वर्ष भी नफरत भरे संदेशों और भाषणों को टक्कर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की रणनीति व कार्य योजना पेश की थी। इस कार्य योजना के जरिए हेट स्पीच की चुनौती से निपटने में देशों को जरूरी नीतियां विकसित करने में समर्थन दिया गया था। महासचिव ने शैक्षिक संस्थानों को डिजिटल साक्षरता पर प्रयास केंद्रित करने, राजनीतिक नेताओं से सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देकर उसे और ज्यादा मजबूती प्रदान करने, मीडिया विशेषकर सोशल मीडिया कंपनियों को नस्लवादी, महिला विरोधी और अन्य हानिकारक वेब सामग्री के बारे में चेतावनी देने के लिए और ज्यादा प्रयास करने की अपील की। उन्होंने हर किसी से नफरत के खिलाफ खड़ा होने, एक दूसरे के साथ गरिमामय वर्ताव करने को कहा। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कोविड 19 महामारी के साथ नफरत भरे संदेशों की सुनामी भी तेजी से उभरी है, जिसे रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट कार्रवाई की दरकार है। उन्होंने चिंता जताई कि विदेशियों के प्रति डर व नापसंदगी और नस्लवाद बढ़ रहा है, साथ ही लोगों व समुदायों को बलि का बकरा बनाकर डर फैलाया जा रहा है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने एक वीडियो संदेश में कहा,
COVID-19 does not care who we are, where we live, what we believe, or about any other distinction. We need every ounce of solidarity to tackle it together.
UN महासचिव कह रहे थे कि कोविड 19 वायरस ये परवाह नहीं करता कि हम कौन हैं, हम कहां बसते हैं, हमारी आस्थाएं क्या हैं या किसी अन्य प्रकार की भिन्नताएं। इस सुनामी से एक साथ मिलकर निपटने के लिए हर संभव एकजुटता की जरूरत है। फिर भी विदेशियों के खिलाफ भावनाएं, यहूदीवाद विरोधी साजिशों की धारणाएं देखी गई हैं और मुसलमानों पर हमले हुए हैं। प्रवासियों और शरणार्थियों को वायरस का स्रोत बताकर तिरस्कृत किया गया है और उन्हें उपचार से वंचित रखा गया है। पत्रकारों, स्वास्थ्य कर्मियों, राहत कर्मियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को महज अपने काम की जिम्मेदारी निभाने के लिए ही निशाना बनाया गया है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल अभी कार्रवाई करनी होगी, ताकि समाजों की प्रतिरोधी क्षमता को नफरत के वायरस के विरुद्ध मजबूत बनाया जा सके। महासचिव गुटेरेश ने राजनीतिक नेताओं से सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देकर उसे और ज्यादा मजबूती प्रदान करने का आग्रह किया है। साथ ही शैक्षिक संस्थानों को डिजिटल साक्षरता पर प्रयास केंद्रित करने होंगे, क्योंकि अरबों युवा ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां वे अतिवादियों या चरमपंथियों का शिकार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया विशेषकर सोशल मीडिया कंपनियों को नस्लवादी, महिला विरोधी और अन्य हानिकारक वेब सामग्री के बारे में चेतावनी देने के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे। महासचिव ने हर किसी से हर जगह नफरत के खिलाफ खड़ा होने, एक दूसरे के साथ गरिमामय बर्ताव करने और दयालुता फैलाने के हर अवसर का लाभ उठाने का भी आह्वान किया है।
संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसियों ने विश्व भर में 60 से ज्यादा बेहद नाजुक हालात वाले देशों में कोविड 19 महामारी का फैलाव रोकने और लाखों लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम में लगभग 7 अरब डॉलर की रकम जुटाने की अपील की है। वैश्विक मानवीय सहायता प्रतिक्रिया योजना गुरुवार 7 मई को जारी की गई, जिसमें समाजों के बेहद निर्बल और वंचित लोगों को सहायता व सुरक्षा मुहैया कराने को प्राथमिकता पर रखा गया है। कोविड 19 महामारी की विभिन्न पहलुओं से जुड़ी खबरों के बारे में आइए सुनते हैं सचिन गौर से।
संशोधित योजना की ये पुकार महासचिव एंटोनियो गुटेरेश द्वारा मार्च के अंत में जारी की गई $2 अरब की अपील पर ही आधारित है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यों के संयोजक मार्क लोकॉक ने अपील जारी करते हुए आगाह किया कि अगर अभी ठोस एहतियाती उपाय नहीं किए गए तो लड़ाई झगड़े, भुखमरी, गरीबी के हालात पैदा होने के साथ साथ अकाल की स्थिति भी पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा,
We must fight the disease, but in the poorest countries it won't be the only battle we face. A coronavirus vaccine is essential.
हमें इस वायरस से लड़ना होगा, लेकिन निर्धनतम देशों में सिर्फ यही एक लड़ाई नहीं होगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन जरूरी है, लेकिन ये एक बच्चे को भुखमरी का शिकार होने से नहीं बचाएगी। अगर हमने तेजी से कदम नहीं उठाए तो विकास पथ पर कई दशकों की प्रगति को बड़ा धक्का पहुंचेगा। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यों के संयोजक मार्क लोकॉक। कोविड 19 महामारी अब विश्व के हर देश में लगभग हर कोने तक पहुंच गई है। मानवीय सहायता एजेंसियों का मानना है कि निर्धन देशों में इस महामारी का उच्चतम दौर अगले 3 से 6 महीनों के भीतर आने की संभावना है। महामारी का प्रभाव पहले इस रूप में नजर आने लगा है कि लोगों की आमदनी कम हो गई है और बहुत से लोगों के रोजगार छिन गए हैं। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बाधित हो रही है। करोड़ों बच्चों को नियमित टीके नहीं लगे हैं और उनके स्कूलों से बाहर रहने के कारण उन्हें स्कूली भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम व अन्य यूएन एजेंसियां और उनके साझेदार संगठन भोजन संबंधी तत्काल जरूरतों के लिए हर दिन लगभग 10 करोड़ लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वैसे तो इन देशों में कोविड 19 संक्रमण के अभी कम ही मामले हैं, लेकिन निगरानी, लैब टेस्ट और स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा बहुत कमजोर है।
दुनिया में करीब 1 अरब लोग विकलांगता के साथ जीवन गुजारते हैं। कोविड 19 संकट से उपजे हालात में विकलांगों को जरूरी मदद और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में मुश्किलें पेश आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार 6 मई को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें महामारी से निपटने की कार्यवाही में विकलांगों का समावेश सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
दुनिया की कुल आबादी का लगभग 15% हिस्सा यानी करीब 1 अरब लोग विकलांगता के साथ जीवन गुजारते हैं। कोविड 19 संकट से उपजे हालात में विश्व आबादी के इस बड़े हिस्से को जरूरी मदद और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में मुश्किलें पेश आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने बुधवार को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें महामारी से निपटने की कार्रवाई में विकलांगों का समावेश सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। यूएन प्रमुख के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में भी विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के अवसरों की उपलब्धता मुश्किल होती है और अपने समुदायों में भागीदारी के अवसर कम मिलते हैं। उनके निर्धनता में रहने और हिंसा, उपेक्षा व दुर्व्यवहार का शिकार होने की आशंका ज्यादा होती है। बुधवार को जारी रिपोर्ट में कोविड 19 पर कार्रवाई में विकलांगता समावेश सुनिश्चित करने के लिए ऐसी सिफारिशों का उल्लेख किया गया है जिनके जरिए समावेशी व सुलभ समाजों का निर्माण संभव है।
श्रोताओ, पूरा विश्व कोविड 19 से जूझ रहा है। कोरोना वायरस से विश्व भर में अब तक 45,27,815 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और 3,03,438 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में अब तक 82,103 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और 2,649 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 27,920 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो गए हैं। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे, जिन्हें प्रस्तुत कर रहे थे महबूब खान। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन स्थित संत मर्था प्रेरितिक आवास के प्रार्थनालय में शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस ने परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना की। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 15 मई विश्व परिवार दिवस घोषित किया गया है। संत पापा ने कहा, विश्व के समस्त परिवारों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि परिवारों में प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता की भावना पोषित होती रहे। ख्रिस्तियक प्रवचन में संत पापा फ्रांसिस ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि प्रभु येसु ख्रीस्त में विश्वास आनंद और मुक्ति प्रदान करता है, जबकि संकीर्णता और कठोरता पीड़ा, भय और उथल पुथल का कारण बनती है। प्रेरित चरित ग्रंथ के उस पाठ पर संत पापा ने चिंतन किया जिसमें पॉल और बर्नाबस अंताकिया के मन परिवर्तित लोगों के बीच भेजे जाते हैं। संत पापा ने कहा कि आरंभिक कलीसिया में शांति के क्षणों के साथ साथ कलह और उथल पुथल के क्षण भी थे। इसी के संदर्भ में आज के पहले पाठ में उथल पुथल के समय की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जिन गैर विश्वासियों ने ख्रिस्तीय धर्म का आलिंगन कर लिया था, उन्होंने ख्रीस्त में अपना विश्वास प्रकट कर बपतिस्मा ग्रहण किया था तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वे आनंदित थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो यहूदी से ईसाई बने थे। इनका दावा था कि गैर विश्वासी प्रत्यक्षतः ख्रिस्तीय नहीं बन सकते, उन्हें पहले यहूदी बनना होगा और उसके बाद ही वे ख्रिस्तीय धर्म का आलिंगन कर सकते थे। यही था उथल पुथल और बहस का कारण। संत पापा ने कहा कि ऐसे ही लोग नव ख्रिस्तियों में संदेहों को उत्पन्न कर रहे थे। स्वतः को पंडित मानने वाले इन्हीं फरीसियों ने लोगों के अंतःकरणों में हेर फेर का प्रयास किया था तथा उनमें कठोरता उत्पन्न कर दी थी। जबकि संत पापा ने कहा कि प्रभु येसु के पुनरुत्थान ने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है जो कठोरता नहीं लाते, इसलिए कि कठोरता ख्रीस्त के पुनरुत्थान से मनुष्य को मुफ्त में मिली मुक्ति पर प्रश्न उठाती है। संत पापा ने सचेत किया कि आज भी कुछ एक ख्रिस्तीय संगठन ऐसे हैं जो कठोर नियमों की प्रस्तावना करते हैं। वे उचित ढंग से अपने कार्यों को तो अंजाम देते हैं किंतु उनके अंतर में भ्रष्टाचार व्याप्त होता है। उन्होंने कहा कि स्वार्थी मनुष्यों द्वारा बनाए गए कठोर नियमों के अंतर्गत विश्वास को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि विश्वास पवित्र आत्मा का वरदान है। वह स्वेच्छा से ईश्वर के नियमों के पालन द्वारा प्रस्फुटित होता है। संत जॉन पॉल द्वितीय की शतवर्षीय जयंती के उपलक्ष्य में पोलैंड के हर धर्म प्रांत और प्रत्येक पल्ली में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की स्मृति में ख्रीस्त्याग अर्पित किया जाएगा। वेटिकन प्रेस ने गुरुवार को इस सिलसिले में पोलैंड के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन की एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर बताया कि संपूर्ण पोलैंड में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की जयंती मनाने के लिए विभिन्न पहलें आरंभ की गई हैं। कोविड महामारी के चलते समस्त समारोह डिजिटल माध्यम से स्ट्रीमिंग के द्वारा प्रसारित किए जाएंगे। इन पहलों में द गिफ्ट फॉर 100 नामक धर्माधीक्षों का अभियान भी शामिल है जिसे इस वर्ष के समापन तक बढ़ा दिया गया है। विज्ञप्ति में बताया गया कि 16 मई से संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की शतवर्षीय जयंती समारोह का शुभारंभ क्रेकॉ के महाधर्माधीक्षीय आराधनालय से होगा। इस अवसर पर एक विशिष्ट प्रार्थना अर्पित की जाएगी जिसका प्रसारण क्रेकॉ महाधर्म प्रांत के यूट्यूब चैनल से किया जाएगा। इटली का बेरगामो, संयुक्त राज्य अमरीका का न्यूयॉर्क और ब्राजील का बेलो ओरिजोंते शहर प्रार्थना समारोह से जुड़े रहेंगे। क्रेकॉ के महाधर्माधीक्षीय आराधनालय में ही संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का पुरोहिताभिषेक संपन्न हुआ था और इसी स्थल से संध्या 5 बजे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजरी माला विनती का पाठ किया जाएगा। रविवार 17 मई से समारोह संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के जन्म स्थल वादोविट्स नगर में मनाए जाएंगे। मरियम गिरजाघर में ख्रीस्त्याग समारोह के उपरांत संध्या समय मैं वादोविट्स में पैदा हुआ था कारोल वोइतिवा शीर्षक से संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के पारिवारिक घर में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन है। इन दोनों समारोहों को पोलैंड के राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल से प्रसारित किया जाएगा। 18 मई को जयंती के दिन क्रेकॉ में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय को समर्पित पुण्य स्थल पर ख्रीस्त्याग समारोह तथा तुरंत संत हमारे समय के नबी शीर्षक से तैयार एक संगीत समारोह का प्रसारण किया जाएगा। इसी दिन संत जॉन पॉल द्वितीय की जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण पोलैंड राष्ट्र के नाम संत पापा फ्रांसिस का वीडियो संदेश पोलिश टेलीविजन चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और इसी बीच संत जॉन पॉल द्वितीय की शतवर्षीय जयंती के उपलक्ष्य में संत पापा बेनेडिक्ट सोलवे ने पोलैंड के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन को एक लघु पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने पूर्वाधिकारी में समाहित दया पर प्रकाश डाला है। वैटिकन प्रेस द्वारा गुरुवार को सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट सोलवे का उक्त पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें बेनेडिक्ट सोलवे लिखते हैं, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का संपूर्ण जीवन ख्रिस्तीय धर्म तथा उसके केंद्रभूत उद्देश्य अर्थात मुक्ति की शिक्षा पर केंद्रित रहा, जिसने अन्यों को भी इसके आलिंगन हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने लिखा, मसीह के पुनरुत्थान के फलस्वरूप ईश्वर की दया सबके लिए उपलब्ध है तथा सभी को यह जानना जरूरी है कि अंत में प्रभु ईश्वर की दया हमारी समस्त दुर्बलताओं से शक्तिशाली सिद्ध होगी। वैटिकन स्थित कैथोलिक शिक्षा संबंधी परम धर्म पीठीय धर्म संघ ने कोविड महामारी के कठिन समय में भी लोगों को शिक्षित करने के लिए कैथोलिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों की सराहना की है। धर्म संघ की विज्ञप्ति में कहा गया कि सामाजिक और मानवीय दूरियों के बावजूद इस साल के पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए कैथोलिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों ने शिक्षा प्रदान करने का काम जारी रखा है, जो सराहनीय है। इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया कि संत पापा फ्रांसिस द्वारा वांछित विश्वव्यापी शिक्षा कार्यक्रम ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन एजुकेशन 14 मई को होने वाला था, ताकि शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना को जागृत किया जा सके तथा पीढ़ियों, धर्मों और संस्कृतियों और साथ ही मानव और पर्यावरण के बीच आदान प्रदान और सम्मेलन की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। विज्ञप्ति में कहा गया कि कोविड महामारी से उत्पन्न संकट ने पहले से कहीं अधिक धरती के लोगों को एकजुट कर दिया है तथा उक्त अपील को और अधिक विचारोत्तेजक बना दिया है। अस्तु, कोई वैकल्पिक समाधान नहीं है। हम सबसे मांग की जाती है कि विखंडन और विरोध पर काबू पाने में सक्षम परिपक्व लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक व्यापक शैक्षिक प्रयासों को एकत्रित किया जाए, ताकि भ्रातृत्वपूर्ण मानवता का पुनर्निर्माण किया जा सके। परम धर्म पीठीय विज्ञप्ति में कहा गया, अपने अपने समुदायों की सेवा के लिए कृत संकल्प हम सभी एक साथ मिलकर वार्ता और समझदारी के मार्ग पर अग्रसर होवें। भागीदारी, सम्मान और आपसी स्वीकृति में निर्मित एक नई मानवता न केवल अपनी संतानों की अपितु उस प्रकृति की भी देखभाल करेगी जो इसके इर्द गिर्द है और जिसके आश्चर्यजनक तथ्यों से वह पोषित होती है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।